समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक शेर की शादी हो रही थी, सभी शेर बाराती बन के जा रहे थे। तो आप जानते हैं कि जब बारात चल रही होती है तो उसमें डांस भी होता है और बैंड बाजे बज रहे होते हैं। तो बैंड बाजा बज रहा था और एक चूहा भी बड़े मजे से डांस कर रहा था। तो कुछ शेर उसके पास पहुंचे और बोला कि शेर की शादी हो रही है, तुम चूहे होके डांस क्यों कर रहे हो? मतलब शेर की शादी में तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो रही है। तो चूहे ने बड़े प्यार से कहा, भाई ऐसा है, शादी से पहले मैं भी शेर था। वास्तव में पति पत्नी के बीच के बहुत सारे जोक्स हैं मित्रों, और अच्छा लगता है कि जब पति पत्नी का जो संबंध है, बहुत थोड़ी बहुत खिटखिट तो होती है, वो चलता है, लेकिन ये ज्यादा ना हो, जो बात बहुत बढ़ जाए तो उस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि विवाह एक सचमुच बहुत ही पवित्र बंधन है, एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। यदि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देखें या श्री सीता और श्री राम जी को देखें, तो वो भी तो विवाह के बंधन में थे, लेकिन वो एक पवित्र बंधन था, एक पवित्र रिश्ता था। और साथ ही कई ऋषि मुनियों ने भी विवाह किया था, लेकिन वहां पे काम वाली भावना नहीं थी, काम वासना नहीं थी, लेकिन वहां पवित्र भाव ही था। लेकिन आज परिवार बिखर रहे हैं और परिवार में वॉर हो रहा है। वास्तव में परिवार वो नहीं है जहां वॉर हो, और वॉर को हमें दूर करना हो, लड़ाई झगड़े को दूर करना हो, तो आपस में मिल बैठ के बात करना बहुत जरूरी है। जैसे दो देशों के बीच भी यदि आपस में द्वंद हो रहा हो, किसी बात को लेके खिटखिट हो रही हो, तो दोनों देश यही कहते हैं कि भाई हम ये जो मसला है इसे बातचीत से सुलझा लेंगे। वो लड़ते नहीं है, क्योंकि लड़ाई का एंड रिजल्ट क्या है दोनों देश जानते हैं। तो जब दो देश आपस में बैठ के किसी मसले को सुलझा सकते हैं, तो पति पत्नी एक छत के नीचे रह के ये कार्य क्यों नहीं कर सकते, इस पे भी हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। आइए, कल की जो बात हमारी हो रही थी उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
कई भ्राता जी हमारे पास मेल भी आए हैं उसी से संबंधित, चूंकि परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और परिवार बना रहे, उसमें सुख शांति बने रहे, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बात बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ी थी कि परिवार वो है जहां वॉर ना हो, इस पे क्या कहेंगे?
अब इस परी को परे कर दो, परे वॉर से परे, परिवार वही है जहां वॉर ना हो। सचमुच इसके लिए दोनों को, बच्चों को भी साथ में, और अगर उनके साथ ससुर हैं, माँ बाप हैं, उनको भी, सबको मिलके इस बारे में अच्छा सामंजस्य परिवार में पैदा करना होगा। करते हैं लोग, ऐसा नहीं करते। माँ बाप भी, जब किसी की शादी होती है तो लड़के के माँ बाप अपनी बहू को बहुत प्यार देना चाहते ही हैं और शुरू करते हैं, लेकिन जब किसी का अहम जागृत होने लगता है, जब किसी को क्रोध ज्यादा आने लगता है, जब किसी के बोल बहुत खराब हो जाते हैं, तो ये कड़वाहट पैदा हो जाती है, खटास भर जाती है। इसलिए पहले मैं मातृशक्ति को कहूंगा, जो गृह मंत्री कही जाती हैं, जो वास्तव में संसार को नई दिशा देने वाली हैं, उन्हें बहुत समझदार होना चाहिए। और अब वो एक नए परिवार में आ गई है, तो उस परिवार को एक अच्छा परिवार बनाना, वार से परे ले जाना, और उस परिवार में प्यार का माहौल बनाना, छोटी बातों को छोटा समझ के पूर्ण कर देना। कई लोग छोटी बातों को बड़ा कर देते, लेकिन बड़ी बातों को भी छोटा बना के समाप्त कर देना। कुछ ऐसे सूत्र हैं, कुछ ऐसे जीवन की सुंदर धारणाएं हैं, ऐसे अच्छे संस्कार हैं, जिनमें यदि मनुष्य आ जाए, बहुत करके मैं कहूंगा बहनें यदि आ जाएं, तो वो परिवार को ठीक कर देती। मैंने ऐसी माताएं देखी, परिवार में कुछ भी बात होती है, वो दो चार मिनट अच्छी बातें करती हैं और सब शांत हो जाता है। मातृशक्ति में प्रभाव है, उसमें प्यार भी है, उसकी बात सुनी भी जाएगी। तो चाहे बड़ी हो बहने, चाहे छोटी हो, सबको बहुत अच्छा माहौल पैदा करना चाहिए, ताकि भाई लोग भी जो काम काज से थके थकाए आते हैं, वहां न जाने क्या क्या होता होगा, क्रोध होता हो, टेंशन होती हो, किसी ने बुरे शब्द बोले हो, उनका अपना कर्तव्य है कि वो भी घर में आकर बहुत शांति से जीवन व्यतीत करें, अपने बच्चों को प्यार दें। बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करने में सबकी भूमिका होगी एक अच्छी, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी।
बिल्कुल प्रति जी, पहले कि हमारे हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है कि गृहस्थ को आश्रम कहा जाता था, कि गृहस्थ आश्रम में अब प्रवेश कर रहे हैं। आश्रम शब्द वैसे भी बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है, और गृहस्थ धर्म भी, गृहस्थ के साथ धर्म को जोड़ा गया था। तो वो गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ धर्म वाली जो बात थी, जो एक परंपरा चली आ रही थी, आज क्या लगता है क्या कारण ऐसे आ गए हैं? जैसे कल एक शंका वाली बात तो हमारी चल ही रही थी, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण ये आश्रम अब बिखरने लगा है?
अब एक तो देखिए, तब ऐसा था कि 25 साल तक लगभग शादी हुई और 50 साल तक उन्हें गृहस्थ में रहना है
जी।
वासनाएं बहुत ज्यादा नहीं थी। अब एक तो इन वासनाओं की अधिकता ने मनुष्य में बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ा दिया, और इस बॉडी कॉन्शियसनेस से कहीं क्रोध, कहीं अहंकार, कहीं बुरी भावनाएं, कहीं बुरे वचन, ये सब आने लगे परिवारों में। तो परिवार का जो धर्म था, देखिए पति का धर्म अलग, भाई धन कमाना, अपने परिवार की पालना करना, पत्नी का धर्म अलग, बच्चों की पालना करना, घर में बहुत अच्छा प्यार का माहौल बनाना, भोजन में बहुत अच्छे पवित्र वाइब्रेशंस भरना। लेकिन आजकल सब एजुकेटेड हुए हैं, तो नारी भी चाहती है वो अपने एजुकेशन को फलीभूत करे, और खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, एक की कमाई से परिवार चलते ही नहीं, शिक्षा भी महंगी है, तो मेडिकल भी बहुत महंगा है, तो बच्चों की शादी ब्याह करने वो भी बहुत महंगे हैं, और कुछ छोटी मोटी बात आ जाए, महंगाई महंगाई है, तो इसलिए दोनों को काम करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात भी है, इसमें कुछ बुराई नहीं है, बल्कि मैं तो बहनों को शाबाश देता हूँ कि वो काम भी करती हैं, फिर घर भी संभालती हैं। बोल्डनेस की बात है ये, नहीं तो
दोहरी जिम्मेवारी।
हाँ, बच्चों की भी ऐसी वैसी बातें भी देखती हैं, उन्हें पढ़ाती भी हैं और कमाती भी हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, समाज ने विकास किया है। पर बस यही कि इन वासनाओं को जरा कंट्रोल में लिया जाए, और ये जो अभिमान और क्रोध की बात है, दोनों ही कामकाज करके आएंगे, दोनों ही थके हुए होंगे, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगे,
कौन किसके लिए चाय बनाए,
छोटी छोटी बात होती है। अगर घर का काम भी बांट लिया जाए, पत्नी पति को कहे भाई तुम बच्चों का ध्यान दो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उन पे ध्यान दो थोड़ा, होमवर्क वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और मैं घर का सारा काम काज करते। लेकिन कभी कभी पति देव क्या करते हैं, सारा काम तुम्हारा, हम तो आए रिलैक्स, सब टीवी देखेंगे, सब कुछ आनंद मनाएंगे, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो इससे भी बहने थोड़ी इरिटेट तो होंगी, परेशान होंगी। एक अच्छा सामंजस्य, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझना, स्नेह देना, सहयोग देना, इसकी बहुत जरूरत है।
पुरुष ऐसा समझते हैं ब्रता जी कि भाई यदि हम घर के कामों में हाथ बटाएंगे तो लोग क्या समझेंगे, या एक पुरुष की मानसिकता ही ऐसी होती है कि भाई ये कपड़े धोना या भोजन बना देना या ये इन सब चीजों में शायद ये महिलाओं का ही काम है, हमारा काम नहीं है, इसमें वो थोड़ा सा लो फील करते हैं, इसमें क्या सजेस्ट
करें? अरे हमारे यहाँ बहुत सारे भाई लोग हैं जो काम करते हैं कि चलो तुम भोजन बनाओ, मैं कपड़े तो मशीन में डाल ही दिए, मैं उसे देख लेता हूँ। हाँ। इसमें इस बॉडी कॉन्शियसनेस की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब एक परिवार है तो अपने घर में कुछ भी काम करना, वो हम नौकरी थोड़ा ही कर रहे हैं, जो हमें लज्जा आनी चाहिए। घर में तो झाड़ू भी लगाता है, बड़ी अच्छी तरह से मनुष्य लगाता है। मैं तो देखता हूँ हमारे यहाँ बहने आती हैं, बहन अच्छी प्रोफेसर है लेकिन बैठ के सब्जी काट रही सब माताओं के बीच में, कोई लज्जा उसे नहीं आती। लेकिन पुरुष अगर डायरेक्टर है तो वह ऑफिशियल रहेगा, मेरा काम थोड़ा ही है। तो इसमें कंपेरेटिवली बहनें हमारी ज्यादा ईगोलेस हैं और ज्यादा होमली फैमिलियर हो जाती हैं हर जगह। तो पुरुषों को भी ध्यान देना चाहिए कि वो गृह कार्य में अपना योगदान अवश्य करें।
बिल्कुल, मतलब आपस में मिलजुल के ही यदि कार्य करें तो ये जो गृहस्थ आश्रम वाली बात है फिर से स्थापित हो सकती है, और साथ ही विकारों को भी दूर रखा जाए, पवित्र भाव से रहा जाए। पता जी, एक मेल हमारे पास आया था, ये कहते हैं चूंकि हमारी चर्चा संबंधों पे हो रही थी, बहुत सारे मेल आए थे, मैंने सबके निचोड़ निकाल रखे हैं। कहते हैं हमारे रिश्ते भगवान के घर से ही बन के आते हैं, रिश्ते ऊपर ही तय हो जाते हैं ऐसा माना जाता है। अब किसी ने ऊपर जाकर देखा तो नहीं है, हाँ ऐसा माना जाता है। यदि ये सत्य है तो भगवान ऐसी जोड़ी क्यों बनाते हैं जो जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है? अब भगवान को अच्छी बना के हाँ भाई ठीक है, ये तुम दोनों ठीक रहोगे, नीचे जाओ,
सारा दोष तो भगवान का ही है, उसने दुनिया ऐसी बनाई।
जब कुछ और समझ में नहीं आता तो
सारा दोष, लेकिन अब वो इस दोष का निवारण कर रहा है कि ठीक है मेरा दोष है तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ, तुम मेरी बात मानो, बस बात ये है हमें उसकी बात माननी तो पड़ेगी। रही बात ये मान्यता के ऊपर से सब रिश्ते तय होके आते हैं, ऊपर तो ब्रह्म लोक है, परम धाम है, वहाँ तो शरीर ही नहीं है, तो ये वाचा और ये सब चीजें ही नहीं है, वास्तव में रिश्ते संस्कारों के कारण बनते हैं, रिश्ते कर्मों का जो एक बंधन है जीवन में उसके कारण बनते हैं। अच्छे व्यक्ति के कभी अच्छे से बन जाते हैं तो कभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वाले से बन जाते हैं। इसलिए ज्योतिष में उनकी राशि आदि मिलाई जाती है ताकि जीवन बहुत अच्छा चले। लेकिन आजकल की बहुत शादियों में तो लोग राशि आदि का ध्यान नहीं देते। फिर भी जो संघर्ष हो रहा है, कोई भी इसका जिम्मेदार हो, भगवान ने नाते रिश्ते बनाए हो तो पहले ही सोचा होगा कि चलो इनके नाते रिश्ते नीचे जाके ठीक हो जाएंगे, बुद्धिमान लोग हैं, अपने को ठीक कर लेंगे। भगवान ने ये तो नहीं सोचा होगा दोनों पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं तो लड़ने लगेंगे। उसकी दृष्टि में तो बुद्धिमानी इसमें है ना कि व्यक्ति समझदार होगा, एक दूसरे की बात सुनेगा, एक दूसरे को सम्मान देगा और इस टकराव से मुक्त होकर रहेगा। तो भगवान को दोष न देकर अब हमें अपने एटीट्यूड्स को, अपने व्यवहार को बदलने की बहुत जरूरत है। तो भगवान जो हमारा परम पिता है वो हमसे बहुत खुश होगा। भला कौन बाप ये चाहेगा कि उसके बच्चे आपस में लड़ने लगे? भगवान भी ऐसा नहीं चाहता कि वो लड़ने लगे। लड़ाई यहाँ शुरू की, लड़ाई मनुष्य के अभिमान ने शुरू की, लड़ाई उसके स्वार्थ ने शुरू की, लड़ाई उसके बुरे संस्कारों के कारण हुई। भगवान ने इन सब की रचना नहीं की, उसने तो मनुष्य को देव स्वरूप में भेजा, देवत्व प्रदान किया, मनुष्य ने बिगाड़ लिया।
बिल्कुल, मतलब अपनी जो ईगो है, क्रोध है या अपनी इच्छाएं कामना है, उसके कारण हम लड़ झगड़ रहे हैं, बाकी उन्होंने तो ठीक ठीक हमें भेजा था। तो क्या ये सत्य है भ्राता जी जो ये बात कही जाती है कि सचमुच ऊपर से ही उन्होंने रिश्ते बना के भेजे हैं और जो आपके लिए अनुधा हुआ है उसी के साथ आपका मेल मिलाप होगा?
ये संसार एक विशाल नाटक है और इसमें सभी को पार्ट मिले हुए हैं। ये झगड़े तो अब के हैं ना, देखिए 50 साल से ज्यादा बढ़े हैं। 50 साल से पहले हमारे देश में तो परिवार ऐसे बंधे रहते थे, एक दूसरे को सम्मान देना बंद गए बस। ये तलाक आदि की बातें यहाँ बहुत कम सुनी जाती थी। कभी कभी हम तो जब तक बड़े हुए मुश्किल से एक दो केस सुना होगा, भाई वहाँ उसका तलाक हो गया, बहुत बुरा हुआ, लोग बड़ा बुरा मानते थे, क्या हो गया ये हमारे समाज में,
और कोई पूछता भी रहा होगा कि तलाक है क्या,
है क्या? तो अब तो ये बात भारत में भी बहुत बढ़ गई। विदेशों की बात तो हम बहुत सुनते ही थे कि व्यक्ति फटाफट तलाक देता है, नहीं बना तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, इसलिए सब अपने अकाउंट भी अलग अलग रखते हैं, अपने घर भी अलग अलग रखते हैं। अगर पत्नी आ गई है तो वो हिस्सा नहीं हुआ, वो उसका घर है, तुम और बना लो, अपना दूसरा ले लो, कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। मैं हंसी में कहा करता था ना, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वो कहते 3W बड़े खराब हैं, 3W पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं सोचा 3W क्या है भाई, वो ये आजकल WWW वेबसाइट की बात तो चलती है। कहा नहीं, वेदर, वर्क और वाइफ, इन तीनों पे यहाँ कोई विश्वास नहीं, कभी भी छूट सकते हैं। तो बड़े हंसते थे, वो भी हंसते थे, यार कई कई बार तो हमारे भी छूट गई। तो लेकिन भारत तो अलग कल्चर का देश है, यहाँ तो मनुष्य मिल के रहता है, वो लड़ते भी इसीलिए हैं कि मिल के रहें, अलग नहीं
लड़ते
होना
भी है, लेकिन चाहते भी है कि हम साथ ही रहेंगे,
साथ रहेंगे, अलग तो होना ही नहीं चाहते और होना भी नहीं चाहिए। अलग क्या जीवन है, मैंने देखा कई देशों में लोग अपने घर मुझे ले जाते थे, बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको कैंसर हो गया था, मैंने पूछा कौन कौन रहते हैं, घर बहुत बड़ा था, नहीं भाई जी मैं अकेला ही रहता हूँ, आई एम अलोन हियर। परिवार वो तो अपने अपने जगह कहीं कहीं हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, तुम्हारी केयर नहीं करते, नहीं बस भगवान करता है अपनी केयर। तो लेकिन भारत तो एक अलग देश है ना, यहाँ तो देखिए कोई बीमार हो जाए सारा परिवार लग जाता है ना उसे, सब अपने काम धाम, अपनी इच्छाएं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं। तो भारत की तो बात ही अलग है। तो मैं तो ये कहूंगा अपने भारतवासी भाई बहनों को, छोटी मोटी बातों को तूल न दें, उन्हें जल्दी जल्दी हटाते चलें और अपने पारिवारिक जीवन को ऐसा सुंदर बनाएं कि बस साथ रहें, साथ रहने का मन करे, साथ रहना बहुत सुखद हो, हमारे साथ को देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित हों कि देखो जीवन हो तो ऐसा हो।
बिल्कुल, ऐसे आदर्श की आवश्यकता है जिसकी हम बात कर रहे थे बेटा जी शुरू में भी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी को भी आज भी हम आदर्श पारिवारिक या गृहस्थ के रूप में देखते हैं, या श्री सीता या श्री राम जी को भी हम आदर्श गृहस्थ के रूप में देखते हैं। तो जब हमारे पूर्वज ऐसे थे तो अब भी उनके वंशज भी तो ऐसे ही होंगे और ऐसे घर बनाए जा सकते हैं। पति जी एक और मेल हमारे पास था, वो कहते हैं कि ऐसी भी मान्यता है कि पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनकी अब लड़ाई हो रही है तो वो साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मिलन हमेशा समान संस्कारों को होगा। अगर संस्कार बिल्कुल समान है तो अगले जन्म में उनका साथ रहेगा। लेकिन पति सोच रहा हो इस पत्नी से जल्दी पीछा छूटे, तो ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में भर जाएगा और उनका साथ नहीं होगा। पत्नी भी सोच रही हो अगले जन्म में कोई अच्छा पति मिले तो उसका भी साथ नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसी कोई श्योरिटी नहीं। सात जन्म नहीं, बस एक ही जन्म को सुखी बना लें। सात जन्म अगर साथ रहना पड़े तो लोग प्रभु जी को कहेंगे प्रभु जी बकस दो किसी भी तरह, अब यही मुक्त कर दो,
हमें आवागमन के चक्र से मुक्त कर दो। लेकिन श्रद्धा जी, यदि ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी मान्यता क्यों है कि सात जन्मों तक हम साथ रहें?
देखिए, हमारे समाज शास्त्रियों ने, जिन्होंने आचार्यों ने, जिन्होंने समाज की व्यवस्था की थी, परिवारों में प्रेम बढ़ाने के लिए ये बात मनुष्य के सामने रखी कि ऐसे प्यार से रहो, दो नहीं एक होकर रहो, कि जन्म जन्म का साथ मिले। लेकिन कर्म मनुष्य के बदलते रहते हैं, कर्म के अनुसार उसके संबंध भी बदलते रहते हैं। सत्य तो यही है, हर जन्म में ये संबंध बदलते हैं।
प्रदा जी, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे आप कई बार ये कहते हैं कि यदि किसी के साथ हमारा हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है, तो फिर वो हम साथ आते हैं, तो भले अभी हमारे लड़ाई झगड़े भी क्यों ना हो, लेकिन यदि मेरा किसी के साथ, इन्हीं के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे भी वही पति या पत्नी के रूप में मिले?
केवल एक जन्म और सात जन्म नहीं, केवल एक जन्म में ऐसा साथ मिल सकता है, अन्यथा नहीं
जी। और कई ऐसा कहते हैं ब्रदर जी कि हमारा आपस में बहुत प्यार है, बहुत ही गहरा प्यार है, हम एक दूसरे को साथ ही चाहते हैं, अगले जन्मों तक हम साथ रहें, तो ये जो एक फीलिंग है, प्यार है, सम्मान है एक दूसरे के लिए, और कई प्रेमी प्रेमिकाओं को भी हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि हम साथ साथ रहेंगे, इसीलिए वो कई बार जीवन का अंत कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आगे के जन्मों में साथ रहें?
जैसे मैंने कहा, एक बार हो सकता है ये चांस मिलता है, अन्यथा ये विश्व का ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसमें सीन बदलते ही रहते हैं। हो सकता पिछले जन्म में किसी और ने ये वायदा कर लिया हो, किसी और से ये संस्कार मिलन हो रहा हो, उसके साथ रहने का सबकॉन्शियस माइंड में भर लिया हो, तो इसके पीछे कर्म, संस्कार, हमारे विचार, कर्मों का ये खाता, ये अनेक चीजें काम करती हैं।
जी जी जी। प्रदा जी, बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी जो बड़ी बहन है और उनकी जो सहेलियां हैं, वो कई बार सुबह सुबह उठ जाया करते थे, कुछ ऐसे अवसर आते थे, जैसे सावन सोमवार वाली बात आती थी, तो सुबह सुबह उठ जाया करते थे, नदियों में, तालाबों में जाके स्नान करते थे, फिर आके शिव जी की पूजा करते थे, सारे दिन व्रत रखते थे, तो मैं उनसे पूछ लिया करता था कि आप ऐसा क्यों करते हो, इतना सुबह सुबह उठना, ठिठुरती ठंड रहती है, इतने ठंडे पानी में नहाना, व्रत रखना, तो कहती थी कि हमें कृष्ण जैसा पति मिले या शिव जी जैसे पति मिले, इस कामना से हम व्रत रखती हैं। तो क्या ऐसे व्रत रखने से, ऐसे पूजा पाठ करने से ऐसे पति, श्री कृष्ण जी जैसे पति, परमेश्वर जैसे पति मिलते हैं, ऐसी संभावना है?
ये बहुत अच्छा हमारे भक्ति मार्ग के निर्माताओं ने किया है कि मनुष्य एक अच्छी भावना से रहे, उसके अंदर भक्ति भाव भी बढ़े और इन देवी देवताओं के लिए भी इस तरह की गुड फीलिंग रहे, ताकि बात वही है अपने कर्मों पर, अपने संस्कारों पर, अगर हमारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात उतर ही गई है, एक तो है कि भाई रस्म निभा रहे हैं कि दूसरी बहनें भी ऐसा कर रही, चलो हम भी कर लेते हैं, लेकिन अगर ट्रू फीलिंग, इनर फीलिंग से ये बात की जा रही है, तो ये संभव है कि ऐसा श्रेष्ठ संबंध अगले जन्मों में मिले।
तो परमेश्वर ही पति के रूप में मिलेंगे या परमेश्वर जैसे पति मिलेंगे?
नहीं, देवताओं जैसे पति प्राप्त होंगे, जो बहुत सौम्य हो, चरित्रवान हो, जिनके जीवन में दिव्यता हो, जिनके जीवन में एक निर्मल प्यार हो, अपनापन हो, जो कर्तव्य परायण हो, जो सुखदायी हो।
प्रदा जी, कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी बहन ने बहुत ही पूरे जीवन अच्छा व्रत किया है, पूजा पाठ की है कि ऐसे परमेश्वर जैसे पति मिले, लेकिन हो ठीक उल्टा जाता है, अब ऐसे पति मिल गए हैं जिनमें परमेश्वर के कुछ अंश या गुण ही नहीं।
ये संभव है कि उस पति परमेश्वर ने भी आराधना की हो, मुझे ऐसी देवी जैसी पति मिले जो भक्ति न हो, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, इनकी नहीं हुई, इनकी आगे चल के होगी। तो देखिए, ये जैसा मैंने कहा, ये कर्मों का संबंध है सब, केवल भक्ति आदि से ही काम नहीं हो जाता, मनुष्य का लंबे काल से कर्मों का एक संबंध चला आता है, इसको कोई नहीं जान सकता कि हमने पिछले 200 साल में किसके साथ कैसे कर्म किए हैं, वो निभाने के लिए, उनको सेटल करने के लिए नाते बनते हैं। जैसे हम देखते हैं तो पति पत्नी की बात है, किसी के घर में एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के कुछ समय बाद से ही वो बीमार होने लगता है, उससे खर्च होने लगता है। 25 लाख रुपए खर्च हो गए 2-4 साल में और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसके पीछे सीधा सा कर्म सिद्धांत रहता है कि इन्होंने उससे 25 लाख लिए थे, दिए नहीं कि क्या करेंगे, देके अब वो लेने आ गया है। तो जैसे ही पूरे हो गए वो इनका साथ छोड़ के चला गया। कर्मों का हिसाब किताब इतना गहन है, इसको स्थूल में समझा नहीं जा सकता, क्योंकि हमें किसी के पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं होता किसने क्या किया है, लेकिन ये नाते हमारे कर्मों के आधार
पे बनते हैं। कल रहते जी हम शंका पे बात कर रहे थे, लेकिन अब आज मेरे पास 3 मेल ऐसे हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये तीनों ही मेल ऐसे हैं जिनकी पत्नियों ने ये मेल भेजा है और इन्हें पूरा पक्का है सबूत सहित कि अब इनके पति देव कहीं और लगे हुए हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम इसे दिया है कि कहीं उनका और संबंध है, ये अब हमारी ज्ञान में आ गया है और इससे हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। और तीसरे ने तो ये लिखा है व्रता जी कि 17 वर्ष की बिटिया है, 10 वर्ष का बेटा है, अब वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वहां लगे हुए हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए।
ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं कि वो पैसा भी नहीं देते और दूसरे को ही देते रहते हैं, संपत्ति भी उनके नाम कर देते हैं, ऐसे केसेस आते ही रहते हैं। वास्तव में स्थिति तो बहुत दयनीय होती है और इसमें माताओं का और बच्चों का तो पूरा ही मनोबल टूट जाता है। अब करें तो क्या करें, वो सब जगह बताते भी हैं क्योंकि आखिर मुंह तो कहीं ना कहीं खुलता ही है जब ऐसी बात होती है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी वासनाओं के इतने अधीन हो जाता है। और इसमें हम तो ये भी सुनते हैं कि उस लेडी ने इन पे वशीकरण मंत्र करा दिया है, ये भी आजकल बहुत चलता है।
मतलब ये भी फैक्ट है कि कुछ ऐसा मंत्र
ये होता ही है और ये वशीकरण मंत्र करके वो उनको अधीन कर देते हैं, वो सारी सैलरी लाते उनके हवाले कर देता है, तुम्हारे बच्चे भूखे मरे मरे। तो इन सब चीजों से निदान पाने का, जैसे इनको हुआ अब ये ज्ञान में आ गई है, तो मैं तो कहूंगा ये बहुत अच्छी बात हुई कि एक भयानक परिस्थिति आपको भगवान की तरफ ले आई। और देखिए जो इस संसार में आया है वो अपना भाग्य साथ लाया है, बच्चे हैं दो, उनका अपना श्रेष्ठ भाग्य भी उनके साथ है, वो भूखे नहीं रहेंगे, उनको पढ़ना है ठीक है, पढ़ने में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, पर हम देखते आते हैं कि जो बच्चे संघर्ष के साथ जीवन को शुरू करते हैं वो बहुत ऊंचे चले जाते हैं, क्योंकि वो संघर्ष भरे जीवन से बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स ले लेते हैं। इसलिए बात तो बहुत बुरी है और बहुत सोचनीय विषय है, दुख देने वाला विषय है, पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये वासनाएं मनुष्य को विवश करती हैं, वासनाएं मनुष्य को अंधा बना देती हैं, लेकिन ऐसी माताओं को बहुत बोल्ड होकर इन परिस्थितियों का सामना करके अपने बच्चों की पालना करनी चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस बुरी वृत्ति से बच्चे बिल्कुल अछूते रहें, इसका प्रभाव उन पे ना आ जाए, अन्यथा बच्चों को सब पता तो चलता है, आजकल बच्चे सब समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, तो उनके मन पर इसका एक बुरा इफेक्ट होता ही रहता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन जन्म लेता रहता है, निराशा के भाव बढ़ते रहते हैं, अपने बाप के प्रति बुरी फीलिंग्स बढ़ती रहती हैं, इसका इफेक्ट चारों ओर बुरा होता है, बच्चों पर बहुत बुरा होता है। इसलिए माताओं का काम है वो बहुत बोल्डली आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे में उस व्यक्ति को सुधारना बहुत कठिन काम होता है, तो अपने को संभालना है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जहां ज्ञान योग की बात है उसमें तो हम परम पिता से जुड़ जाते हैं, उसकी शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं, उसकी मदद हमें मिलने लगती है, और जैसा इनके साथ हुआ ये ज्ञान मार्ग पे आ गए तो इनके सुनहरे दिन अब प्रारंभ हों।
क्या ऐसी संभावना है प्रता जी, जैसे एक तो इन्होंने कहा जो 2 पहले केसेस थे कि अब हम बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, दर्द होता है, बार बार वो विचार आते होंगे कि पहले भी, मतलब जो उनके वैवाहिक जीवन का सुख रहा होगा, पहले के वायदे रहे होंगे, वो सब याद आते हैं, अब उन्होंने हमें धोखा दे दिया, कहीं और लग गया, तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, इस तकलीफ को कैसे दूर करें।
वही मैंने कहा, जब ये ज्ञान योग करते हैं तो इन्हें जो शिव बाबा से परम पिता से गुड फीलिंग होंगी, बल आएगा आत्मा में, उसके बल से ये इन चीजों को स्वीकार कर लें, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। अब उस व्यक्ति को बदलना, जैसे मैंने आज तक केस सुने हैं, ये संभव नहीं होता, इसलिए मैं फिर वही कहूंगा, अपने को बदल के एक नई राह पर चलकर अपने बच्चों की अच्छी पालना करनी चाहिए।
जी जी जी, चलिए बहुत ही गंभीर चर्चा है ब्रता जी, फिर कभी इसे जरूर मैं आपसे प्रकाश लूंगा कि और क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि तो आर पार वाली स्थिति हो जाती है कि अब क्या किया जाए, जीवन बिल्कुल अंधकार में दिखाई देने लगता है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक सुंदर बात जरूर ध्यान में रखिए कि यदि कोई रूठे आपसे तो उसे फौरन मना लीजिए, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो जिद में न अटके रहें कि नहीं मैं ही सही हूँ। यदि लगता है कि बातचीत करके बातों को सरल किया जा सकता है तो उसे सरल जरूर कर लें, और साथ साथ योग का अभ्यास जरूर करें ताकि परिवार का माहौल बहुत सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामना है कि भारतवर्ष का हर परिवार, न केवल भारतवर्ष का लेकिन विश्व का हर परिवार परिवार बन के रहे, जहाँ कोई वॉर ना हो, आपस में मिलन हो, शांति हो, सद्भावना हो, प्रेम की सरिता प्रवाहित होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल पुनः मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।